अध्याय 39 बाशन पर विजय। यह अध्याय व्यवस्था विवरण 2 आयत 3 1 से 11 पर आधारित है। एदोम के दक्षिण में पहुंचकर इसराइली उत्तर की ओर मुड़े और उन्होंने फिर से अपने चेहरे प्रतिज्ञा के देश की ओर किए। अब उनका मार्ग एक लंबे चौड़े मैदान पर स्थित था, जहां पहाड़ों से ठंडी स्वच्छ मंद पवन चलती रहती थी। उस निर्जल घाटी से जहां से वे यात्रा करके यहां आ रहे थे, यह एक सुखद परिवर्तन था और वे प्रसन्नचित और आशान्वित आगे बढ़ते गए। जेरेद नदी को पार कर वे मोआब प्रदेश के पूरब में पहुंचे, क्योंकि उन्हें आज्ञा दी गई थी मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूत के वंशजों के अधिकार में किया है। और यही निर्देश अम्मोनियों के संबंध में भी दोहराया गया, क्योंकि वे भी लूत के वंशज थे। उत्तर की ओर बढ़ते हुए इसराइली शीघ्र ही अमोरियों के देश में पहुंच गए। आरंभ में इन बलवंत और रणकुशल लोगों ने कनान प्रदेश के दक्षिणी भाग को अधिकृत किया हुआ था, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने पर इन्होंने यर्दन नदी को पार कर मोआबियों पर चढ़ाई करके उनके अधिकार क्षेत्र से कुछ भाग को अधिकृत कर लिया था। यहां पर वे बस गए थे और अर्नोन से लेकर उत्तर में यब्बोक तक की भूमि पर उनका निर्विवाद अधिकार था। यर्दन को जाने वाला मार्ग जिस पर इसराइली अपनी यात्रा करना चाहते थे, इसी भूखंड से होकर निकलता था और मूसा ने अमोरियों के राजा सिहोन के पास मैत्रीपूर्ण संदेश भेजा। मुझे अपने देश से होकर जाने दे, मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुलूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी मुझे रुपया लेकर दे देना कि मैं पीऊं, केवल मुझे पैदल जाने दे। उत्तर एक निर्णायक अस्वीकृति में आया और अमोरियों की सभी सेनाओं को घुसपैठियों की प्रगति का प्रतिरोध करने के लिए बुलाया गया। इसराइली, जो सुअनुशासित और हथियारबंद सेनाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार न थे, इस दुर्जय सेना से भयभीत हो गए। जहां तक युद्ध में कौशल का प्रश्न था, उनके शत्रु श्रेष्ठ थे। मनुष्य की दृष्टि से इसराइल का शीघ्र अंत निश्चित था, लेकिन मूसा ने अपनी दृष्टि बादल के स्तंभ पर टिकाए रखी और लोगों को इस विचार से प्रोत्साहित किया कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक अभी भी उनके साथ था। उसी समय उसने उन्हें निर्देश दिया कि युद्ध की तैयारी के लिए वे सब करे जो मानवीय क्षमता के बस में था। उनके शत्रु युद्ध के लिए उत्सुक थे और उन्हें विश्वास था कि वे अचेत इसराइलियों को अपने देश से मिटा देंगे, लेकिन सभी देशों के स्वामी से इसराइल के अगुवे के पास जनादेश पहुंच चुका था। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं, उन सब के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समाने लगूंगा। वे तेरे समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। यदि कनान के इन सीमांतर प्रदेशों ने परमेश्वर की आज्ञा को चुनौती देकर इसराइल की प्रगति का प्रतिरोध नहीं किया होता, तो इन्हें छोड़ दिया जाता। परमेश्वर ने इन मूर्ति पूजक जातियों के प्रति भी चिर सहिष्णु, कृपालु और करुणामयी होने का प्रमाण दिया था। जब अब्राहम को दर्शन में दिखाया गया कि उसके वंशज अर्थात इसराइल 400 वर्ष तक एक पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, यहोवा ने उसे यह आश्वासन दिया, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। हालांकि एमोरी मूर्ति पूजक थे, जिनका जीवन उनकी अति दुष्टता के कारण न्यायतः तज दिया गया था, परमेश्वर ने उन्हें उसके एकमात्र सच्चा परमेश्वर और धरती और आकाश का सृजनहार होने का असंदिग्ध प्रमाण देने के लिए 400 वर्ष के लिए छोड़ रखा। उन्हें मिस्र से इसराइल लाने में उसके सभी चमत्कारों से वे परिचित थे, पर्याप्त प्रमाण दिया। यदि वे लुचपन और मूर्ति पूजा से मुंह मोड़ने को तत्पर होते, तो वे सत्य को जान सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रकाश का तिरस्कार किया और मूर्तियों को पकड़े रखा। जब यहोवा दूसरी बार अपने लोगों को कनान की सीमा पर लाया, उन मूर्ति पूजक जातियों को उसके सामर्थ्य का अतिरिक्त प्रमाण दिया गया। उन्होंने देखा कि राजा अराद और कनानियों पर प्राप्त विजय में परमेश्वर इज़राइल के साथ था। सांपों के द्वारा काटे जाने से मरने वालों को बचाने के लिए किए गए चमत्कार में भी वो उनके साथ था। हालांकि इज़राइलियों को एदोम प्रदेश से होकर जाने की स्वीकृति नहीं मिली थी और इस कारण वे लाल समुद्र के किनारे किनारे लंबे और कठिन रास्ते पर जाने को विवश हो गए थे, फिर भी एदोम, मोआब और एमोन प्रदेशों के पास से की गई यात्राओं और डाले गए पड़ावों में उन्होंने कोई शत्रुता नहीं दिखाई और न ही लोगों को या उनकी धरोहर को कोई हानि पहुंचाई। एमोरियों की सीमा पर पहुंचने पर दूसरे देशों के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार संबंधी नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने केवल प्रदेश में से सीधे यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। जब एमोरी राजा ने उनकी विनयपूर्ण सानुरोध याचना को अस्वीकार कर दिया और चुनौती देते हुए अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए एकत्रित किया तो उनके पाप का घड़ा भर गया और अब परमेश्वर ने उनकी पराजय के लिए अपनी शक्ति का अभ्यास करने का निर्णय किया। इसराइलियों ने अर्नोन नदी को पार कर शत्रु पर चढ़ाई की। एक मुठभेड़ हुई और उसमें इसराइल की सेनाएं विजयी हुईं और इसी विजय का लाभ उठाते हुए उन्होंने शीघ्र ही एमोरियों के देश पर अधिकार कर लिया। वो यहोवा की सेनाओं का कप्तान था जिसने उसके लोगों के शत्रुओं को पराजित किया और यदि इसराइल ने उसमें विश्वास रखा होता तो 38 वर्ष पूर्व भी उसने ऐसा ही किया होता। आशा और साहस से भरपूर इसराइल की सेना व्यग्रता से आगे बढ़ी और उत्तर की ओर यात्रा करते हुए शीघ्र ही उस देश में पहुंची जहां परमेश्वर में उनके विश्वास और उनके शौर्य की परख होनी थी। उनके सम्मुख था बाशान का शक्तिशाली व जनपूर्ण राज्य, जिसमें प्रख्यात पत्थर के नगर थे जो आज भी संसार को अचरज में डाल देते हैं, 60 नगर। उनके ऊंचे ऊंचे शहरपनाह और फाटक और बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर। व्यवस्था विवरण 3:1-11। वहां के घर विशाल काले पत्थरों से निर्मित थे जिनका विशालकाय आकार भवनों को उन पर उस समय की आने वाली किसी भी शक्ति के लिए पूर्णतया अभेद्य बना देता था। वो डरावनी गुफाओं, ऊंची ऊंची खड़ी चट्टानों, गहरी और फैली हुई खाड़ियों और पहाड़ी दुर्गों से भरा देश था। इस देश के निवासी, जो एक असुर जाति के वंशज थे, स्वयं अद्भुत डील डॉल और शक्ति के स्वामी थे और वे हिंसा और निर्दयता के लिए इतने विख्यात थे कि सभी पड़ोसी राष्ट्र उनका भय मानते थे। उस देश का राजा ओग अपने डील डॉल और भुजबल के लिए असुरों के राष्ट्र में भी विलक्षण था, लेकिन बादल का स्तंभ आगे आगे चलता रहा और उसके मार्गदर्शन में इब्री समुदाय एद्रेई की ओर बढ़ा, जहां वो विशालकाय राजा अपनी सेना सहित उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ओग ने कुशलता से युद्ध का स्थान चुना था। एद्रेई नगर एक सीधी ढाल वाले पठार पर स्थित है और दंतुरित ज्वालामुखीय चट्टानों से ढका है। वहां चढ़ाई के लिए दुर्गम और सीधी ढाल वाले संकीर्ण मार्गों से ही पहुंचा जा सकता है। हारने की सूरत में उसकी सेना चट्टानों के बीहड़ में शरण ले सकती थी, जहां अपरिचितों द्वारा उनका पीछा किया जाना असंभव था। सफलता के लिए निश्चित, राजा अपनी विशाल सेना के साथ खुले मैदान में आगे आया। पठार पर से ललकार की पुकार सुनाई दे रही थी, जहां लड़ाई के लिए तत्पर हजारों के हथियार दिखाई देते। जब इब्रियों ने उसकी सेना के सैनिकों से भी ऊंचे असुरों के असुर की उस विशालकाय आकृति को देखा, जब उन्होंने उन सेनाओं को देखा जो उसे घेरे हुए थी और उस अभेद्य गढ़ को देखा जिसके पीछे हजारों अदृश्य खाई में छुपे थे, तो कई इसराइलियों के हृदय भय से कांप उठे। लेकिन मूसा शांत और दृढ़ था। परमेश्वर ने बाशान के राजा के संदर्भ में कहा था, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना।
उनके अगुवे का निश्चल विश्वास लोगों को परमेश्वर में विश्वास की प्रेरणा देता था। वे उसके सर्वशक्तिशाली हाथ में विश्वास रखते थे और न तो शहरपनाह वाले नगर, ना हथियारबंद सेनाएं और ना ही चट्टानी घर यहोवा की सेनाओं के कप्तान के सम्मुख खड़े रह सकते थे। सेना का नेतृत्व प्रभु ने किया, प्रभु ने शत्रु को परास्त किया, प्रभु ने इज़राइल के पक्ष में विजय प्राप्त की। असुर राजा और उसकी सेना को नष्ट कर दिया गया और इसराइलियों ने संपूर्ण राज्य को अपने अधिकृत कर लिया। इस तरह पृथ्वी पर से उन असामान्य लोगों को मिटा दिया गया जिन्होंने स्वयं को अधर्म और मूर्ति पूजा को समर्पित कर दिया था। गिलाद और बाशान की विजय में कई लोगों ने उन घटनाओं का स्मरण किया जिनके कारण कादेश में 40 वर्ष पूर्व इसराइल को इतने लंबे समय तक बीहर में भटकने को विवश कर दिया गया था। उन्होंने देखा कि प्रतिज्ञा के देश से संबंधित गुप्तचरों की सूचना कई विषयों में सही थी। नगर चारों ओर प्राचीरों से सुरक्षित थे और असुरों से निवासित थे। उनकी तुलना में इब्री मात्र बौने थे, लेकिन अब वे देख सकते थे कि परमेश्वर के सामर्थ्य में अविश्वास उनके पूर्वजों की सबसे क्षतिकर गलती थी। यही एकमात्र कारण था जिसने उन्हें उस समृद्ध देश में अविलंब प्रवेश करने से रोका था। जब वे प्रारंभ में कनान प्रवेश की तैयारी कर रहे थे, उनके कार्य में अब से कम कठिनाइयां आई थीं। परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वह उनके आगे आगे जाएगा और उनके लिए लड़ेगा और उस देश के निवासियों को खदेड़कर भगा देने के लिए ततैये भी भेजेगा। उन राज्यों में सार्वजनिक तौर पर भय उत्पन्न नहीं किया गया था और उनकी प्रगति के प्रतिकार के लिए बहुत कम तैयारियां की गई थीं। लेकिन जब प्रभु ने इसराइल को आगे बढ़ने की आज्ञा दी तो उनके लिए सतर्क और सशक्त शत्रुओं के विरुद्ध अग्रसर होना आवश्यक था और इसराइलियों के आगे बढ़ने को रोकने की तैयारी करती रही उन विशाल और सुशिक्षित सेनाओं के साथ लड़ना था। ओग और सिहोन के साथ प्रतिस्पर्धा में लोगों को वही परीक्षा देनी पड़ी जिसमें उनके पूर्वज विशेष रूप से असफल रहे थे, लेकिन अब वह परीक्षा उस समय से अत्यधिक कठोर थी जब परमेश्वर ने इसराइल को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। उनके रास्ते की कठिनाइयां बहुत बढ़ गई थीं जब से उन्होंने प्रभु के नाम में अग्रसर होने के आदेश को अस्वीकार किया। इसी रीति से परमेश्वर अभी भी लोगों को परखता है। यदि वे परीक्षा में खरे नहीं उतरते तो वह उन्हें पहले वाले स्थान पर ले आता है और दूसरी बार परीक्षा पहले वाली परीक्षा से ज्यादा और शीघ्र आती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक वे इस परीक्षा को सहन करते हैं, या यदि वे फिर से विद्रोही होते हैं तो परमेश्वर उन्हें प्रकाश से वंचित कर देता है और उन्हें अंधकार में छोड़ देता है। इब्रियों ने अब स्मरण किया कि किस तरह एक बार पहले जब वे युद्ध करने गए थे उन्हें उखाड़ दिया गया था और हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन उस समय वे परमेश्वर की आज्ञा के प्रत्यक्ष विरोध में गए थे। वे परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुवे मूसा के बिना, ईश्वरीय उपस्थिति के प्रतीक बादल के स्तंभ के बिना और वाचा के संदूक के बिना गए थे, लेकिन अब मूसा उनके साथ था जो उनके हृदयों को विश्वास और आशा के शब्दों से प्रबल कर रहा था। बादल के स्तंभ में प्रतिष्ठापित परमेश्वर का पुत्र उनका मार्गदर्शन कर रहा था और पवित्र संदूक सेना के साथ था। इस अनुभव में हमारे लिए एक सीख है। इसराइल का महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसमें हम विश्वास रख सकते हैं, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह हमारे लिए वैसे ही विशेष रूप से कार्य करेगा जैसा वह प्राचीन काल में अपने लोगों के लिए करता था। जो भी कर्तव्य के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता है कभी कभी अविश्वास और संदेह की चपेट में आ सकता है। वह रास्ता कभी कभी इतनी बाधाओं से बाधित होगा कि वह दुर्गम प्रतीत होगा, और जो निराशा के आगे झुक जाते हैं उन्हें निराश कर देगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों से कहता है, आगे बढ़ो, किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कठिनाइयां इतनी विकट प्रतीत होती हैं, जो तुम्हारे चित्त को भयभीत कर देती हैं, एकदम विलुप्त हो जाएगी यदि तुम परमेश्वर में दीनतापूर्वक विश्वास करते हुए आज्ञाकारिता के रास्ते पर आगे बढ़ोगे।